Tereo Ererangi o Te Mania. This episode was produced in Otatahi by Plains Media, with support from New Zealand On Air.
जलसा फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम स्टार्ट विनेश. हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें. दोस्तों साथ साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो लाइव ब्रॉडकास्ट में. मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ में आज पेनलिंग पे है साहिल और हमारे पास जो आज गेस्ट है साथ देने के लिए आ पहुंचे हैं ही इज नन अदर देन विवेक श्रीवास्तव फ्रॉम जनरेशन होम्स जो हमारे मेजर स्पॉन्सर है. चलो हम इस प्रोग्राम को आगे लेते हैं और आप सबको हैप्पी लॉन्ग वीकेंड कहते हैं क्योंकि मंडे को ज्यादा करके लोगों के आज पब्लिक हॉलीडे रहेगा बींग किंग से बेहतर है. और काफी खेल कूद के भी समाचार है. वी हैड अ फ्यू गेम्स जो यहाँ पे हुआ था बिटवीन क्रुसेडर्स और फिर ड्रुआ एंड सेवंस एंड सो मेनी थिंग्स क्रिकेट वगैरह. लेकिन वील सी हाउ मच टाइम वी हैव क्योंकि हमारे पास साहिल फुल न्यूज एंड वील सी इफ यू कैन कैच अप ऑन दैट एज वेल. जी हाँ और वेल अदरवाइज इट्स गेटिंग अ बिट कोल्ड इन क्राइस्टचर्च बट क्राइस्टचर्च तो क्राइस्टचर्च है बट आई थिंक दिन में बहुत बुरा नहीं था. इट वॉज क्वाइट अच्छा था, अच्छा मौसम मिला था. Now I'm sure you are enjoying yourself. और आज हमारा जो प्रोग्राम रहेगा we'll just play a song आपके लिए because हम जब अपना इंटरव्यू शुरू कर देते हैं then हमारे पास टाइम बहुत नहीं रहता है सॉन्ग्स के लिए. इसलिए we'll just play a song first and then हम बात करेंगे विवेक जी से फ्रॉम जनरेशन हो और अभी उनका जो जल्दी जो हम अपने सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट वगैरह देखा होगा देन न्यूज़ जो स्कीम हम कह सकते हैं अबाउट ट्रेडिंग तो वी आर क्वाइट कीन. तो हमने विवेक से बोला इफ यू कैन कम एंड एक्सप्लेन टू अस हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. I know many people would be interested. और साथ साथ में we'll just ask him कि अभी हाल में क्या चल रहा है, what's in the market doing और किस तरह के inquiries and what kind of customers they are having at the moment. वो सब जानकारी हम उससे लेंगे. I know many people अभी भी in काफी sections जो भी develop हो रहे हैं and I know many people would be looking into it या construction or buying. So I think we'll get as much information as we possibly can from Vivek. और उसके बाद में after we finish of the interview then hamare paas ek interview hai play karne ke liye and that's the interview I had with MP Vanessa Winning aur this is to do Jalsa's new initiative which is KYC. KYC yani ki know your candidate. Ji haan, ye election campaign nahi hai but it is hamara ek initiative hai with our knowledge partner Crashers Bengali community aur Plains Media aur for their contribution thank you but we are bringing this particular segment to you so that you become aware because mujhe maloom hai jab election aati then people actually hesitate because they don't really know their candidates. So this is हमारे छोटे से कोशिश है for you to be aware and hopefully you make your decision based on what you can learn from those interviews. तो वही हमारा कोशिश रहेगा. चलो हम आगे बढ़ते हैं साहिल. So we'll play the song and then हम विवेक जी से बात करेंगे. Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों और साथियों, आपको हम फिर से स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सेल लाइफ प्रोग्राम में. मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि साहिल इज गोइंग टू हेल्प अस विद पेनलिंग. और जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फेसबुक में, उनको भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं शिवनील को, जो आज हमारे जो वीडियो संभाल रहा है. और हमारे जो गेस्ट है उसको हम स्वागत करते हैं, विवेक श्रीवास्तव, नॉट अ स्ट्रेंजर, वो हमारे जो साथ साथ काफ़ी सालों से है. थैंक यू सो मच विवेक जी आपके सपोर्ट के लिए. और जनरेशन होम्स ऑफकोर्स वुड लाइक टू थैंक देम as well. और जनरेशन होम इज अ ब्रांड हम कह सकते हैं इन स्पेशली हमारे जो क्राइसिस में अगर देखा जाए, या इन न्यूजीलैंड भी अगर बोल सकते हो, देन जनरेशन होम्स इज अ ब्रांड. और ये जो कंपनी काफ़ी सालों से है, लाइक सिंस 1997 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये हमें जो सेवा कर रही है कम्युनिटी को, और देर आई थिंक वन ऑफ आई थिंक टॉप टीआर में अकाउंट हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट्स लाइक हाउस बिल्डिंग में. तो चलो हम विवेक जी आपको स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं ठंड से. तो आज काफ़ी ठंड है बाहर,
बहुत ठंड है. सबसे पहले तो थैंक यू विनेश और जलसा फिजी रेडियो जो काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो थैंक यू हमको बुलाने के लिए यहाँ पे. और ठंड तो क्राइस्टचर्च में पीक ऑफ द ठंड है अभी, और ऐसा प्रेडिक्ट है कि भाई नेक्स्ट फ्यू वीक्स में काफ़ी ठंड होने वाला है.
जी हाँ भैया, रिमाइंडर जी, यही होता ना, हम समय एंजॉय करते 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 फिर भूल जाते हैं कि यू नो विंडा भी आने वाला है.
बिल्कुल,
देन सडनली ये हिट करना शुरू
का भी अलग मजा है.
जी हाँ वो तो है, वो तो है. और जो लोग अभी भी घर वो फायर प्लेस जिसके घर पे था, आई एम श्योर दे'ल बी एंजॉयिंग देमसेल्फ. सो चाय लेकर बैठना और नो फायर को देखना, उसका अलग मजा,
समोसा खाना.
जी हाँ बिल्कुल. और वंस अगेन नो थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम एंड कमिंग ओवर एंड ऑफकोर्स सपोर्टिंग अस, बिकॉज आप के जो सपोर्ट है उसको द्वारा ये हम रेडियो प्रोग्राम कर पाते हैं, और कम्युनिटी का जो भी कुछ इवेंट्स है उसे भी हम प्रमोट कर पा रहे हैं. और अभी जो जलसा टैलेंट सीरीज चल रहा है, वी जस्ट फिनिश्ड सीजन 5, तो चल ही रहा, बट एपिसोड 4 हम कल शुक्रवार को हमने फिनिश किया. वी मिस्ड यू, आई नो यू आर नॉट हियर. और जो 4 तक पहुंच गए एंड 5th रहेगा इन जून. तो थैंक यू सो मच. और एट द सेम टाइम, जिसे हमने शुरू में भी मेंशन किया था, जो लोग हमें फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे थे और जो अभी फेसबुक पे, आपको बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में वैसे फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, बट वी आर गोइंग टू प्ले द इंटरव्यू that we had with the MP Vanessa Winning, or it's KYC, yani ki know your candidate program, jo hamara ek initiative, and this is all due to the support that we receive from businesses. Aur Generation Home is of course our major sponsor helping us out. To chalo Vivek, hamare paas as usual, jaise main har waqt bolta samay kam hi rehta hai, and we have so much to talk about. Jab ghar ki baat aati hai aur jis tarah aap section se shuru karte, yani ki ekdam stage 1 se shuru karte, zero ground se lete ho, fir ghar bana kar dete ho, I know a lot of things to talk about, but let's start with what's happening at the moment. क्या हो रहा है आपका सेक्शन वगैरह कहाँ पे?
देखिए, हम लोग तो पूरे कैंटरबरी में बनाते हैं, और ये रेंगियोरा, काइपोई, रॉलस्टन, लीस्टन, डारफील्ड, आपका हॉल्सवेल, सारा बहुत सारे जगह पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. और डिपेंडिंग अपॉन सेक्शंस, ये सेक्शंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो डेवलपर लोग सेक्शंस निकालते हैं और हम लोग सेक्शंस को होल्ड करते हैं, या तो क्लाइंट के पास भी सेक्शंस रहता है तो उनको वो बोलते हैं कि मेरे पास ये सेक्शन है इसके ऊपर, तो प्लान बना के देना, उनको प्राइस देना. तो जैसा कि आपने बोला कि स्टार्ट से लेके फिनिश करते हैं हम लोग, और फिनिश के बाद भी हम लोग 2 साल का घर देने के बाद 2 साल का वारंटी रहता है कि 2 साल तक आपको अगर कुछ घर का प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम वारंटी के अंदर है तो हम लोग उसको फिक्स करते हैं. तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं. चैलेंजेस भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खुशी भी लगता है कि जब घर बन के तैयार होता है, तो जैसे एक बच्चे को रेज करते हैं आदमी, तो बच्चे जब बड़ा हो जाता है तो भाई नौकरी करने लगता है तो वो देख के कितना अच्छा लगता है. वैसे ही होता है जब घर बन के तैयार होता है तो वो जो फीलिंग होता है, जो चेहरे पे स्माइल होता है क्लाइंट्स के और जो ओनर्स के बच्चे लोग के ऊपर भी, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है. वो उस टाइम बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि बहुत लोग खुश हैं अंदर से. और घर तो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है.
जी नो डेफिनेटली. और काफ़ी जुड़े होते हैं ना लोग अपने घर से
जी
ना, और स्पेशली जब बनाते हैं, अगर आप बना ऑलरेडी बिल्ड अगर घर ले रहे हो तो डिफरेंट बात होती है, जस्ट बिकॉज यू गो एंड चूज इन. जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ले लिया, बट वेन यू आर बिल्डिंग तो ऐसा आपको लग रहा है कि आप खुद उसको तराश रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, प्लेन आपके साथ में डिसाइड कर रहे हो, फिर एवरीथिंग छोटे से छोटे चीज़ कलर्स
कस्टमाइज.
जी हाँ एग्जैक्टली. तो काफ़ी फिर जेन ही रहता है ना, देन यू वेट, यू आर एंशियसली अवॉइड कर रहे हो, फिर जाकर ईच डेवलपमेंट आप देख रहे हो, तो आई नो कि वो क्या फीलिंग, क्या इमोशंस जुड़ी रहती है उसके साथ साथ में. बट गोइंग ऑन द अदर साइड, अगर हम उसके ऑपोजिट एंगल से देखें, यू नो व्हाट अबाउट फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज आई नो आप क्लाइंट के साथ में हो एंड यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ विद प्लेन्स, हाउ डू हैंडल द फ्रस्ट्रेशन अगर आपको लग रहा है कि आप एक जगह स्टक हो रहे हो एंड प्लेन अग्री नहीं हो रहा है, एंड हाउ डू एंड यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड.
होता है ऐसा, बहुत बारी हुआ है. और हम लोग इसमें ये कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ जो घर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, धूप, जो सन होता है ना, तो वो सन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो हम लोग कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ है तो उसमें हम लोग ये भी बोलते हैं कि तुम आप लोग ऐसा करो कि एक कोई रियल इस्टेट वाले से बात करो कि अगर ये घर का प्लान है, अगर घर को हम बेचना चाहते हैं इस प्लान के ऊपर ना, तो ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कैसे होगा, क्योंकि रियल इस्टेट वाले लोग को भी काफ़ी नॉलेज होता है ना कि भाई कैसा सन का ओरिएंटेशन है और उस ओरिएंटेशन में घर का सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे दिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो कभी कभी थर्ड पार्टी लोग, थर्ड पर्सन लोग भी एडवाइस करते हैं, वो लोग तो एक न्यूट्रल पर्सन एडवाइस करते हैं तो वो लोग को बिलीव कर देते हैं कि भाई कि नहीं ये ठीक बोल रहे हैं. एक दो लोग का ओपिनियन अगर आ जाता है ना तो दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन मेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन. यू नो बडी नोज दैट वेयर आई एम मेकिंग अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन. हाउ एवर इफ समबडी एल्स पुशेज इट, समबडी एल्स उसको डिक्टो कर देते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है. तो होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो उनकी ज़रूरत है, जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फुलफिल करें, और जो सन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, ताकि कल को अगर घर बेचे, क्योंकि ये जनरेशन होम का भी प्राइड है ना कि हु इज बिल्ड दिस हाउस. भाई घर बिक नहीं रहा तो भाई जनरेशन होम ऐसा घर बना के दिया है, तो वी डोंट वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन कि भाई वो बाद में नाम खराब हो. क्योंकि सिर्फ घर बनाना ही नहीं है हम लोग को, उससे हम लोग को उनसे हम लोग रेफरल लेना है, रिकमेंडेशन लेना है, रिव्यू लेना है. तो देर आर लॉट ऑफ स्टेजेस, लॉट ऑफ स्टेप्स, हम लोग को साथ कनेक्ट होना है उनको. तो हम लोग हर कुछ को, पॉइंट्स को क्लियर करके, टिक करके, सारा बॉक्सेस टिक करके, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेज, जो कि प्लानिंग साइन ऑफ होता है.
जी हाँ, अग्री विथ विवेक, एंड दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड विथ यू स्पेशली, और जितने भी स्टाफ से भी हमने मिले हैं फ्रॉम जनरेशन होम्स, आई हैड द सेम काइंड ऑफ वाइब एंड सिमिलर एटीट्यूड जिससे भी हम मिलते हैं. और ये अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जाते हैं एज अ कस्टमर एंड यू वांट समथिंग, और जो उधर का होता है कंपनी दे कर देते हैं आपका काम, बट देन आगे चल के तो मुसीबत होती है, एंड देन यू गो बैक एंड से यू नो व्हाई डिडंट यू टेल मी, तो बोलता है ये हमारा काम नहीं था ना, आपने जो बोला दाम दिया हमने दे दिया. बट इट्स अ गुड थिंग दैट एक्चुअली यू गो थ्रू दैट एजुकेशन प्रोसेस एज वेल, आप इन्फॉर्म कर देते हो, एंड बिकॉज यू आर द प्रोफेशनल, यू ऑब्वियसली इन अ बेटर पोजिशन टू नो सच थिंग्स, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट. अच्छी बात है. और एट द सेम टाइम कभी कभी ये भी आपने लाइक डू यू कम अक्रॉस दिस एज वेल कि कस्टमर कुछ मांग रहा है कि बिल्डिंग हमें यहाँ से बनाना है, and then you have to explain to them कि नहीं ये नहीं हो सकता because of the requirements from the council or something.
तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो मेरा architect है ना उनके साथ ही meeting करवा देते हैं और पहले architect को बता देते हैं कि भाई ऐसा सा situation है, तुम सारा guideline सब देख लो. क्योंकि यहाँ पे दो guideline होता है, एक तो developer जो land का guideline होता है, एक होता है जो council का guideline होता है. तो दोनों को combine करके ना तब इसका outcome निकलता है. तो वो हम लोग पहले ही बात करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि जब प्लान प्रपोज करें ना काउंसिल को तो उसको पुश बैक रिजेक्ट ना करें. क्योंकि अगर आप प्लान को प्रेजेंट करते हैं और प्लान को पुश बैक मिलता है तो वो टाइम डिले होते रहता है ना, और टाइम डिले और हम लोग जैसा आपको पता है 18 वीक्स में हम लोग घर बना के देते हैं फाउंडेशन से, जो कि क्राइसिस में बहुत कम बिल्डिंग कंपनी है जो 18 वीक में घर बना के दे देता है. हम लोग स्टार्ट टू फिनिश कर देते हैं 18 वीक्स में फाउंडेशन से. तो वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो सब चीज़ करके और उसको सामने प्रेजेंट करें, सो दैट कि काउंसिल, कभी रेयरली ऐसा हुआ है कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया और हम लोग भी पुश बैक मिला है. हुआ है ऐसा, ऐसा नहीं कि हम लोग भी परफेक्ट हैं, वो ऐसा नहीं है. वी ऑल्सो गेट इन द सिचुएशन कि ऐसा हुआ है हम लोग के साथ कि नोइंगली अननोइंगली हम लोग भी ऐसा सिचुएशन में पड़े हैं एक दो, बट 98% 99% हम लोग थ्रू हो जाते हैं टाइमलाइन के हिसाब से.
जी हाँ, और एक चीज़ वही होती है ना लाइफ में, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, एक चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए. एंड यू हैव लाइक सेमिनार्स वगैरह होते होंगे टू एजुकेट योरसेल्फ सो दैट वी नो, और फिर लेजिस्लेशन भी चेंज होते रहता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अप टू इट. वैसे तो जैसे मैंने शुरू में बोल दिया था कि एक तो जनरेशन होम इज़ अ ब्रांड, जैसे आपने बोला है कि यू टेक नो प्राइड 18 weeks में डिलीवर करना. फिर आपका दूसरा जो नो जो लोगो या आपका जो स्टेटमेंट होता है फिक्स प्राइस, तो हमने काफ़ी बार सुना है, सो वी नो दैट. और द सेम टाइम हमने ये भी मेंशन किया था कि व्हेन अगर हम विवेक से घर के विषय में बात करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे पास वक्त नहीं रहेगा. वी विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट. वी विल क्विकली जंप टू व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे, जो हमारा थीम रहेगा विच इज़ ट्रेडिंग. आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज हमें मालूम है, हम गाड़ी में देखते हैं कि आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है, देन यू टेक यू टू द डीलर, डीलर आपको एक सर्टेन अमाउंट देता है एंड देन यू वॉक अवे विद अ न्यू कार.
जी बिल्कुल सही सुना आपने. अभी लास्ट मंथ में ही हम लोग ये लॉन्च किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का इंक्वायरीज आ रहा था हम लोग के पास कि अब अभी हम लोग घर को मूव करना चाहते हैं, घर वी आर इन ए सिचुएशन वी वांट टू सेल द हाउस. तो ये करके हम लोग पिछले 6 months से रिसर्च कर रहे थे कि भाई इस चीज़ को कैसे लॉन्च किया जाए सो दैट को क्लाइंट को भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो और एक स्ट्रेस फ्री ये जर्नी रहे लोगों का. क्योंकि घर बेचना यहाँ पे भी सबसे हाई, घर बेचना और घर चेंज करना नंबर 10 है यहाँ पे. आप जैसे जितना भी स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का नंबर 10th लास्ट है यही है. मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत छोटे छोटे स्ट्रेसेस है, बट ये सबसे एक्सट्रीम स्ट्रेस है कि घर को बेच के एक दूसरे घर में जाना. तो बहुत सारा इंक्वायरी होने के बाद हम लोग यही सोचे कि भाई इसको कैसे हम लोग ऐसे डिज़ाइन करें सो दैट कि लोगों को स्ट्रेस फ्री ये जर्नी हो जाए. तो बिल्कुल आपने सही बोला कि जब हम लोग कोई ट्रेडिंग कर, जैसे कोई गाड़ी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो फिर उसके बदले आप नया गाड़ी लेते हैं. तो उसी तरह अगर आप, अगर घर हम लोग को दे रहे हैं ना, तो आपको एक नया घर हम लोग बना के देंगे आपके अनुसार, जो आपको चाहिए जिस जगह पे चाहिए. ऐसा नहीं कि हम लोग बना बनाया घर दे रहे हैं नया, हम लोग उस लैंड को एक्वायर करेंगे और लैंड के ऊपर आपके लिए आपके अनुसार 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom, 5 bedroom होम एंड इनकम कुछ भी बना के आपको हम देंगे. तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग घर को अपग्रेड करना चाहते हैं. अपग्रेड इन द सेंस, जिनका सिचुएशन आज से 5 साल पहले कुछ और था, अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि फैमिली मेंबर बढ़ गया है, तो उसमें उनको रूम्स ज़्यादा चाहिए, तो 4 bedroom का घर चाहिए. तो उनके लिए वो जो 3 bedroom का घर है वो अब ज़रूरत नहीं है उनको, और वो सोच रहे हैं कि अगर बेचेंगे तो फिर अभी बहुत सारा प्रोसेस है बेचने का, ओपन होम करना होगा, लिस्ट करना होगा, और उस समय आपको घर खाली करके घर को पूरा सजाना पड़ेगा, जो स्टेजिंग जिसको बोलते हैं. तो वो सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना हम लोग सोचे कि नहीं, सारा स्ट्रेस हम लोग ले लेंगे और हम लोग उस घर को बेचेंगे. और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में आप रह सकते हैं जब तक आपका नया घर ना बन जाए. तो ऐसा नहीं कि आप जब एक बार कमिट कर देते हैं नया बनाने में, और जो जो आपका इक्विटी है वही इक्विटी आपका डिपॉजिट यूज़ हो जाएगा. तो जितना भी चीज़ है ये बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, उसमें ये भी है कि आपको वैल्यूएशन होता है, सारा प्रोसेस जो होता है ना वो सारा प्रोसेसेस को टिक करना पड़ता है एंड देन यू चूज वेयर यू वांट टू गो. और एक बार वहाँ पे जब वो पेपर साइन हो जाता है ना, देन यू वेट, वो घर जब बन जाता है तो जब डे ऑफ द सेटलमेंट उसी दिन आपका वो घर, जो पुराना घर है वो हम लोग ले लेंगे, और आपका नया घर का जो भी अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो पे कीजिएगा और हम आपको पुराने घर का पैसा दे देंगे. तो मतलब ये जो एक क्या बोलते हैं, एक हिंदी में जो बोल रहे हैं ना कि बहुत ही ये सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, ऐसे इसका टेक्निकल लैंग्वेज बहुत सारा चीज़ है. और टेक्निकल लैंग्वेज में है कि भाई आपका इसका हाउस का वैल्यूएशन करवाइएगा, इसका जो काउंसिल का है सारा कुछ, वो प्रोसेस जो होता है ना वो है मेरे पास, इसका सारा गाइडलाइन है, और किसी को भी ज़रूरत होगा तो फिर हैप्पी टू शेयर विद देम. और ये लॉन्च के बाद ना आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पूरे न्यूजीलैंड में ना हम लोग के पास एटलीस्ट 400 to 500 इंक्वायरीज आए हैं.
वाह, 400 to 500 इज अ बिग नंबर.
हाँ, सिर्फ क्राइस्टचर्च का 400 to 500 नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर, क्योंकि ये पूरे हर जगह लॉन्च हुआ है, तो ऑकलैंड और हर जगह, बहुत सारे जगह, तो काफ़ी इंक्वायरीज और काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं. थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ का स्टेप्स है, और जिस जहाँ से हम लोग को फंडिंग लेना पड़ता है, स्क्विरल है तो उनके थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है, और वो वैल्यूएशन जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है वो सब देखना पड़ता है, उसके बाद कितना इक्विटी है घर के अंदर उसको सारा मेजरमेंट करके ना एनालाइज करके फिर हम लोग को एक फिगर ला के देना पड़ता है क्लाइंट्स लोग को. तो ऑब्वियसली हम लोग अगर कोई चीज़ ले रहे हैं और आपका स्ट्रेस भी ले रहे हैं और हम लोग खुद से वर्किंग कर रहे हैं तो दैट कम्स विथ अ मनी, तो वो थोड़ा आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा. सेम टू सेम जो मार्केट रेट है वो नहीं मिलेगा. हाँ, आपको हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल के आपको प्रपोज करेंगे कि ये वैल्यू हम देंगे आपको, और आपको ये भी एक एक फ़ायदा होगा कि आप उस टाइम तक घर पर रह सकते हैं.
जी हाँ बिल्कुल, देयर्स अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्वड रहता है ऑब्वियसली. और अभी हम आपने जो शुरू में बात किया था स्ट्रेस की, तो सेल्स मैनेजर का स्ट्रेस लेवल कहाँ पे काउंट, कहाँ पे
सेल्स मैनेजर का स्ट्रेस लेवल?
जी बिकॉज 400 to 500 इंक्वायरीज, और फिर उसके बाद में अभी जो आपने हमें बताया, आई एम श्योर जो लोग अभी सुनेंगे दे माइट हैव मोर क्वेश्चंस, वो लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या यू नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स, बिकॉज मुझे मालूम है काफ़ी लोगों का घर होता है ना ऑब्वियसली, and then they want to build a new one because they've been in that home for certain years and jaise aapne bola many reasons hota hai and they want to upgrade, aur abhi to sections bhi develop ho rahe hain and then hum social media mein bhi kafi hota hai and we look at this new flashy homes, to hum bhi sochte hain chalo hum bhi kyun na naye ghar mein rahe, aur and there are many reasons people choose to do that, aur obviously that could be one option, trade-in option. Sounds nice, jaise gaadi ki baat hoti hai na to aapko bechna nahi padta hai, trade me and then deal nahi karna padta with buyers and no wo bhi ek
हाँ, और एक एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे, जैसे आज हम बात कर रहे हैं किसी से ना, तो वो वैल्यू निकाले हम लोग है ना, और वो जो लास्ट जो जब उनका सेल होता है ना, वो तो उस पीरियड में 8 या 9 महीने लग जाता है, 7 महीने लग जाता है. 7 महीने में कौन सा मार्केट है, लेकिन हम कमिटमेंट आज कर दिए हैं, तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ना, और वो ये फैक्टर हम लोग के लिए थोड़ा रिस्की भी है, क्लाइंट के लिए भी रिस्की है, हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ा बूम कर जाए तो थोड़ा लॉस ना हो जाए, लेकिन क्लाइंट को ये मतलब ये समझ में आना ओनर को ना कि भाई चलो वो पैसा मेरे वो कमिटमेंट है, वो मेरे पास पैसा आएगा ही, और बैंक भी देखता है कि नहीं ये इनके पास वो पैसा आएगा, तो बैंक को भी लेंडिंग में कंडीशनल लेंडिंग मिलता है उनको.
जी हाँ बिल्कुल, आई मीन दैट समथिंग गैम्बल की तरह होता है ना, यू ऑब्वियसली हैव टू टेक द रिस्क, जिस तरह में फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात होती है,
बिल्कुल
व्हेन यू स्टार्ट फिक्सिंग दैट यू टेक अ रिस्क, सभी में रिस्क होता है, और हमें नहीं पता है कि क्या नेक्स्ट होने वाला है. आई मीन इंटरेस्ट हम सोचते हैं राइस होगा तो फॉल होने शुरू कर देते हैं, समटाइम्स मार्केट कैन क्रैश, तो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज काइंड ऑफ अ गैम्बल. लेकिन एज ए मेंशन एलिया कि काफ़ी लोग हैं इनकी और भी जानकारी चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ न्यू पैकेज आपने जो अनाउंस किया है, एंड मैंने जब सुना देन डेफिनेटली मैंने बोला चलो आप रेडियो पे आना, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड पीपल को अगर हु नोस किसको ये अच्छा लगे आइडिया, and I want them to take advantage if it suits them, but obviously you have to make a decision after going through the process. Aur yahan pe jab aap bolte ho ki settlement hi then jab settlement hoga that's when they move in and move out of the existing home, to usi waqt that's when the money thing happens, isse pehle unko like turnkey ki tarah chalta
na. Ha, ye bilkul turnkey hai, ye total turnkey hai, aur ye jaise turnkey mein 10% deposit hota hai, to unke ghar ka jo equity hai na wo equity hi hum log ka deposit hoga.
Ji ha,
तो मनी का ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कितना इक्विटी है उस घर के अंदर. अगर किसी के पास 5%, 7%, 10% इक्विटी तो शायद मुश्किल होगा डील देना, लेकिन किसी के पास ज़्यादा इक्विटी है ना, दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस, तो उनका भी रिस्क कम होता है, हम लोग का भी रिस्क कम होता है. तो जिस दिन वो सेटलमेंट अगर होगा जिस दिन होता है ना, उस दिन बैंक के ही थ्रू सारा पेपर्स वर्क करता है, लॉयर के थ्रू ही होता है सारा कुछ, ट्रांजेक्शन इन एंड आउट.
जी बिल्कुल, चलो हम घड़ी की तरफ देखते हैं, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम, एंड आई नो आपको भी काफ़ी जगह जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ लॉन्ग वीकेंड एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली पर्सन, और हम भी आपका सोशल लाइफ भी देख लेते हैं कभी कभार, तो आई नो यू कैन यू माइट हैव सम पार्टीज टू गो टू, हु नोस टुनाइट. तो चलो बताइए आज ओनिया आपका क्या प्लान, आप यहाँ से क्या कहाँ जाने वाले हो?
अभी तो हम घर जाएंगे और शायद अपनी वाइफ को लेके कहीं डिनर पे ले जाएंगे, हाँ, क्योंकि 2-3 दिन से थे नहीं ऑकलैंड में, क्राइस्टचर्च में, तो बस अब वीकेंड सोचे उसके साथ वाइफ के साथ मनाने के लिए.
जी हाँ, और एनी पर्टिकुलर व्यूज ऑन दी करंट जो बजट रिलीज हुआ है?
हाँ, अभी तो हम कल मिस कर गए थे सारा कुछ, हाँ, तो अभी सब रिकैप करेंगे जाके देखेंगे, क्योंकि 2 दिन काफी हेक्टिक रहता है ना, जाना आना हम लोग का ना, सुबह सुबह जाना फिर वहाँ पर लेट नाइट, तो जिस दिन बजट था उसी दिन हम लोग का ये था.
जी हाँ, बट आई नो इट माइट हैव एन इफेक्ट ऑन लाइक बिल्डिंग सिचुएशन में भी, एंड देन यू माइट बी इंटरेस्टेड ना, हो जाता है तालुकात लगते हैं व्हेन इट स्पेशली टू डू विद द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, तो हमें देखना पड़ता है कि हाउ इट अफेक्ट्स. सो नो वरीज विवेक, विल we'll let you know, go and then फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में या तो फिर कहीं और पे and we'll try to bring this news and maybe we can do a catch up at a later time and see how the trade in is progressing because I know inquiries आने ही वाली है and if there's more questions then we might catch up again but I know generation keeps on bringing different packages तो ऐसा कुछ रहेगा then we'll catch up with you again
thank you Vinesh
जी थैंक यू सो मच ये थे विवेक श्रीवास्तव फ्रॉम जनरेशन होम्स अब हम ये फेसबुक लाइव यहीं पे एंड करते हैं थैंक यू सो मच शुभरात्रि और हम कंटिन्यू करते हैं ऑन फ्रीक्वेंसी एंड साहिल माइट वांट टू प्ले अ सॉन्ग एंड देन उसके बाद में हम सुनेंगे जो इंटरव्यू हमने ली थी विद एमपी विनेसा विनिंग
क्यों ना उड़े तू चुनरिया ओ तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया तिरछी निगाह मेरे दिल पे गिराए ने बिचुरिया बिचुरिया तिरछी निगाह मेरे दिल पे गिराए ने बिचुरिया बिचुरिया जो भी देखे हो जाए वो
दीवाना तेरा
सोने जैसा तन तेरा उफ बोला पन तेरा मुझको भी कर गया दीवाना तेरा ओ सुन बाकी रे गुजरिया ये बोले है डगरिया सुन बाकी रे गुजरिया बोले ये डगरिया लच के कमरिया तो चल के गगरिया कि तेरे बजरिया चिके कमारिया तो चल के गगरिया की लुटी रे बजरिया लचके कमरिया तो फिर के बिजुरिया मचके डगरिया तो गिर के बिजुरिया और बिजुरिया और बिजुरिया नैनों से मारे छोरी ऐसन बिजुरिया
मैंने ओढ़ी चुनरिया मुझे लगे ना नजरिया ओढ़ी चुनरिया मेरा ही दीवाना मेरे दिल का गायर बनूंगी मैं दुल्हनिया मेरा ही दीवाना मेरे दिल का गायर बनूंगी मैं दुल्हनिया
Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Gowise Driving School. If you need driving lessons and contact Anshul Gupta of Client Real Estate who can assist you with achieving a better sale for your property and contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city and contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
Welcome to Jalsa Fiji Radio. This is Program Director Vinesh and this one is our new initiation. KYC, know your candidate project, and we have the extreme pleasure of welcoming MP Vanessa Winning in our initial episode of KYC, and we would like to thank our knowledge partner Christchurch Bengali Community for their contribution, as well as Plains Media for onboarding our project. And this session is all about knowing our candidates better. This is not to be confused with any election campaign. We just want you to know what your candidates are doing and their role in their constituency. So we'll begin this interview, and the questions will be around knowing more about, in this case, Vanessa Winning. So thank you so much, Vanessa. We welcome you on board, coming to the studio. Of course, this is a weekend, but still busy. I know you have a lot of work to do, but today we are here. And so what we will do is we'll start up with a very simple question. Today the weather was very kind, I guess, and what have you been up to?
Today has been a wonderful day. It's beautiful weather. So actually today I've been out at Hallswell collecting for Aviva, which is Stopping Violence organisation, and chatting with locals, and people are incredibly generous, so it's been wonderful. And then just being out in the community chatting with people.
Thank you, Vanessa. And as I understand, you are, and as we all know, you are an elected MP, and your constituency is the Banks Peninsula.
Yeah.
So would you like to kind of explain to us how the dimension of this?
So the Banks Peninsula electorate takes in the whole of the Banks Peninsula, but also it takes in all of the Port Hills, Sumner, Ferrymead, Woolston, through Summerfield, St Martins, a little bit of Hoon Hay, and Hallswell. So it's quite a diverse and large area, but most of the people live in Christchurch City, but it has a lot of farmland, a bit of forestry, lots of tourism, fishing, heaps of different things. So it's a really diverse community.
I see. And before we go on to your kind of background, which of course we are very interested in, so what would be the issues that's kind of the topmost when you go around in your constituency?
Yeah, well, the same as everywhere, I think. At the moment, everyone's concerned about the affordability of just getting around and living. The fuel crisis that's happening internationally is playing on everyone's mind, and how that plays through to the cost of things like groceries, and then jobs and housing. Then I think people are wanting to make sure that education and our health system are working well.
I see. As we all guessed, I mean, those are definitely those issues that everybody is concerned about. And if we get a chance after we finish up with our initial 10 minutes where we will try to know more about you, if we can talk about that. But at the same time, we have some questions as well, which we'd like to ask, which kind of comes to us from our own migrant community, as you would expect.
Yeah.
So just about yourself, so before you became a politician, what have you been doing?
All right, well, thank you. So my background was that I was a general practitioner for over 20 years. I was working at Papanui Medical Centre before I started campaigning. I'd been working there as a owner of the GP practice for quite a while. And before that, I was actually a army officer. So I was a medical officer in the army. I deployed twice to Afghanistan and once to East Timor. And I grew up in a tiny little place called Canvastown and went to school in Marlborough Girls College. But my family have got deep roots and connections to the Banks Peninsula. My great-great-great-great-grandfather was the first architect of the Littleton Time Wall, and I've had family members who've lived on the peninsula and grew up there pretty much since the 1870s. So it's a really important place to me, really deeply in my blood, and I absolutely love it. I've got one son who is 21 now. He's studying chemical and process engineering at Canterbury, and I'm a very proud mum of him.
I see. And about interests, you've been a GP and you've been in the army as well.
Yeah.
But what about interests like?
I love to paint. So I'm a visual artist. I used to actually sell my art when I had time to do it. Now I don't find myself in the same sort of creative space and mindset so often, but I still like to do watercolours and acrylics and a bit of mixed media dabbling around. And I joke to people that actually my real hobby is buying art supplies, because I really love that. But I love to read and, you know, watch movies. I used to have a huge garden, but now I have a smaller garden, so I don't need to spend so much time in that. But I used to really love gardening and getting my hands in the dirt.
I see. And then the next obvious question, I think, which we would be coming to, which would be your journey into politics. Like, you've been AGP, you've been in the army, and that your love for arts and gardening. So what made you a politician?
Well, I was starting to think that I wanted to take care of larger sort of communities and look at policy. And I'd started with doing a postgraduate diploma in public health. So I was really interested in that sort of thing. And then I realized, hey, politics is really public health on a really practical level. So I decided to get into that because I really care about service for our community and for our country. And so that's a deep value that I have. And getting into politics was in some ways a natural progression for me of looking after individuals, looking after communities, looking after the country.
I see. And now that you are a politician and looking back, how are we kind of, like, for example, health-wise, are we improving? Are we there? Or you think that you are able to make any kind of difference?
It's nothing changes quickly in the health system. And I think that what we found when we came into government was that the waiting list for things like surgery had really blown out. Partly that was because of COVID, but that only had a partial effect. Partly it was because the previous government had got rid of targets, and so we weren't keeping an eye on like how long people were waiting. So reinstating those targets has actually been really important to make sure that we keep an eye on it and keep improving all the things in the background that need to change. Our government's also increased the funding for general practice. So although we haven't solved every problem, I think we're making really practical steps to improve things. And there's a lot more that we can do. And I'm really excited about what the work that we're doing in health.
Thank you so much. And you said you were in the army before, though it may not be something that you may be in charge as such when it comes to the government.
Yeah.
But that's not, again, something that we hear much about.
Yeah, that's
true. So what's happening?
I think one thing that people often misunderstand is what's the point of having a defence force. And really, having a defence force is about participating in the world and making sure that New Zealand is contributing to all of the ways that we keep our world safe, because we're an open trading nation. And so for me, defence is actually about trade. It's actually about keeping our country safe. And so when we spend money on the Defence Force, we're spending money on making sure that New Zealand is contributing to the wider world and making sure that we keep peace internationally, keep our waterways open, because navigation and freedom of the seas is deeply important to us and our trade. So when we talk about our Defence Force, we're talking about securing our future. And that's deeply important to me, and I think all New Zealanders.
And we do see a lot of young, I think, young ones actually thinking about joining the military or the defence. And when we talk about defence, of course, we have got air and then land, and then we have got water as well.
Yeah,
so,
yes.
Yeah, so it's quite wide over there.
Mm-hmm.
So the next question, well, I was quite interested, your son, he's in uni at the moment.
Yes.
And we all know what we are hearing at the moment, what we are seeing, or it's basically a fact that all those graduates, they are struggling with finding a job. So have you got any thoughts about that?
Yeah, well, that's absolutely true. At the moment, when you've been through an economic downturn, jobs are harder to find, and it is just a reality of the way that economic cycles work, and that when you've gone through a downturn, jobs are often the last thing that slow down, but also the last thing to pick up. And so as we see businesses having more confidence in investing in themselves and investing in more workers, jobs will slowly start to pick up. And we've seen that starting to happen. Unfortunately, we you know, get a bit of a headwind from international events. But I think as investors and companies start to improve their business and expand their businesses, we're going to see a lot more growth. And I think there's a lot of exciting opportunities happening, especially in the sciences and engineering type sectors.
Nice. And I guess you've been going around at the moment, meeting people, greeting people, and talking to people. Have you been hearing voices from the businesses? Any concerns that they are raising, and maybe that's something they want you and your government to look at?
Yeah, absolutely. We're talking to businesses a lot, and for them, we are living in very uncertain times, and that's something that we can't control. The effects of international disruptions, we can't control. All we can control is how our government responds to that. And so it's very important that everything that we do is very targeted and timely, so that it's if we're giving any assistance to people during these hard times, it is actually to the right people, and so that we don't go out and blow a whole lot of money. Because if the government spends too much money, it puts pressure on the economy by basically driving inflation. And if we drive inflation as well as having all of these external factors from our internal spending, then it'll just make things a whole lot worse. So our job as a government is to keep a steady hand on the tiller. And so at least no matter what's happening in the rest of the world, businesses and our communities can be sure that at least we've got our all of our responses really calm and considered in our response.
Thank you, Vanessa. And we are almost reaching our 10th minute mark. So the other thing I wanted to raise from the conversation we are having today is arts, your love for arts.
Yeah.
So when we look at New Zealand, we know we may be gifted because we have a lot of artists. Mm-hmm. And actually, we had a lot of movies and made over here. And of course, we have this TV series, Shortland Street. I'm from Fiji, and it has been so popular over there. I'm not sure now, but when I was back in Fiji, we used to, everybody would tune into the TV too, and they wouldn't want to miss any Shortland Street episodes. What do you think is happening now? Are we making movies, or are we drifting away? Are we appreciating art enough, or is it one sector that can be looked into and maybe more jobs created there?
Absolutely. The creative industries are a huge economic driver, not only for driving things like tourism, which is really obvious, but just in the fact that people who are making things and selling it are creating incredible depth of wealth in our country. I think sometimes you're right. Some people don't always appreciate the arts, but without having the arts, whether that be music or performances, whether that's movie or visual arts, anything like that, it makes life quite dry and boring. And you've seen our government's invested a lot in some major events, which are showcasing the importance of the arts in terms of economic growth and development. It is true that during economic downturns, often people don't spend as much money on the arts, but it is important that people continue to develop themselves, and that we continue to value that sector.
I see. And now we are approaching into our last kind of 5 minutes.
Yeah.
So how do you regard yourself as a champion of? Is it like crime that you're more into, making sure that we have enough police presence? Or is it something else?
That's a big factor and a big focus for our government. So when we first came in, we decided that we wanted to target reducing the victims of violent crime. And we've done quite a lot of that. So we now know that there's about 49,000 fewer victims of violent crime. And there's been a huge reduction in things like ram raids and youth crime. That means that people are safer in their homes, and that was really important to us. When it comes to thinking of what do I personally, as a politician, what do I champion the most? Within my party, I'm what we call a blue-green. So I'm really, really interested in making sure that National is pushing policies that support and enable us to support the environment and conservation efforts. So I've been really vocal about our position on the Fisheries Amendment Bill. I've been really supportive of the work that Tama Potaka is doing around making sure that we have actually got practical ways of supporting and investing in our conservation work that we do in this country. Really excited to see a nature-based credit that we're bringing in alongside the carbon credit system. So all of those things will be practical ways that we invest and enable more conservation work in our country, because I think that is one of the best things about New Zealand is our natural environment. And from my perspective, there's no such thing as choosing over the environment versus economic values. They really go hand in hand. You can't have a stable economic plan if you've got environmental destruction. And you also can't have conservation without having a plan for how you're going to pay for it.
And thanks so much. This is one topic that we obviously need a lot of time on, because then that leads us to into mining, and there's so many other things that we can talk about, but unfortunately we can't today. We'll have to catch up again in another session, and then we can dig more into it. But for now we are in our community question round. So when it comes to a community in your constituency, I know it's Healthwell and the areas that we have mentioned. So I guess that's a lot of kind of migrant population already.
Yeah, it's starting to be. Yeah, so traditionally Banks Peninsula has been quite a European-based population, but the last census showed that there's been a growing population of migrants from India, Asian countries as well. And I've definitely noticed that when I've been out door knocking. And when you go to the local schools, the schools are really diverse, and the people that are going to the schools and the children there as well.
And one thing we have been hearing from our community is, of course, the changes that's going to happen or will be implemented into the citizenship rules. What would be your thoughts?
So I haven't seen exactly what those rules are going to be. It's not uncommon in some countries for there to be a test of some kind. I would be a little bit cautious about that and want to find out exactly what the purpose of it is. It's not something that requires a change of law. The Minister for Internal Affairs, who is Brooke Van Velden, can make those rules with her powers that she has. So I think the important thing is to make sure that it doesn't create barriers for people, because I think that immigration is one of the most important things in our country for our long-term, survival of our country, really. Immigrant population are extremely valuable in everything that they bring to this country. So I don't want there to be barriers to people. I want it to be a way of making sure that people understand what are the expectations around coming to New Zealand and living in New Zealand, without that being a way of putting people off. Because I think we're going to be competing for the best kind of people to be coming here, and I think that we don't want to be putting people off in any way.
Thank you so much, Vanessa. Unfortunately, I can't ask any more questions because we are up to our time now. So once again, thank you so much. So before we leave the studio, so what is your plan for tonight?
Actually, I'm going out this evening with a friend. I'm going to see the latest Star Wars movie.
Wow, we're good on that day. All the best, and hope you enjoy. So thank you so much for coming to Plains Media Studio to do this interview. It has been our pleasure of interviewing MP Vanessa Winning. We would like to show our gratitude to Plains Media, of course, and our knowledge partner, Grassroots Bengali Community. And this interview is all about knowledge, passing on information, just letting you know more about your candidate, and it should not be confused as a election campaign. So we'll catch up again at some other time with another video. But for now, signing off from Jalsa Fiji Radio, this is Program Director Vinesh.
Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements and contact T. Nandan of Go Wise Driving School. If you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Denny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
चलूं किस्मत से जली है